नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप डॉक्टर सविता पारीक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए मानव बल की बहाली करेगी। प्रदेश में सुदूरवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार देने के लिए नवादा, मधुबनी और सुपौल समेत 9 जिलों में 18 से 29 अक्टूबर तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के शिक्षक किसी अन्य कार्य के लिए नहीं होंगे प्रतिनियुक्त, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानक कार्य का शासी सम्मेलन है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। एक रिपोर्ट।
इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम में दूरसंचार, डिजिटल और सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से अधिक देशों से 3000 से अधिक उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 6G, कृत्रिम बुद्धिमता AI, साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों के भविष्य पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करेगा, जहां प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां और नवोन्मेषक 6G, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के साथ साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और चक्रीय अर्थव्यवस्था में प्रगति पर प्रकाश डालेंगे। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए मानव बल की बहाली की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि राज्य में भागलपुर डॉल्फिन सैंक्चुरी में पर्याप्त डॉल्फिन मौजूद है। उन्होंने कहा कि इनके संरक्षण के लिए मानव बल बहाली की प्रक्रिया चल रही है। श्री कुमार ने कहा कि पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में उपकरण भी जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही श्री कुमार ने बाढ़ प्रभावित किसानों की फसलों की क्षति का आकलन करने और मुआवजा समय पर देने के निर्देश दिए हैं। श्रम संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के 9 जिलों में 18 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विभागीय सचिव दीपक आनंद ने बताया कि निदेशालय नियोजन और प्रशिक्षण की पहल से आयोजित होने वाले इस मेले का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि इस मेले में तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाकर युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह मेला अलग अलग तिथियों पर नवादा, खगड़िया, बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जिले में आयोजित होगा। प्रदेश के नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने और उसके रखरखाव का अधिकार नगर निकायों को दिया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त और नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार EESL के दावों के निपटारे के बाद नगर निकाय अपने स्तर पर नई स्ट्रीट लाइट लगा सकेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एजेंसी EESL के साथ किए गए समझौते की अवधि दिसंबर महीने में समाप्त होने के बाद निकायों को इसकी जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें देशभर के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले उन्हें यह सुरक्षा सिर्फ बिहार के लिए दी गई थी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश कुमार भट्ट ने यह जानकारी दी। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल से अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता के तहत चांसलर ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। 19 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता की थीम लाइन शक्ति और साहस का प्रदर्शन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश भर में इथेनॉल जैव ईंधन के 400 पंप स्थापित किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3 ऑटोमोबाइल कंपनियां जल्द ही फ्लेक्स इंजन वाले वाहन बाजार में उतारेंगी। श्री गडकरी ने सीएनजी, इथेनॉल और मीथेन जैसे जैव ईंधन के लिए अपशिष्ट पृथक्करण की आवश्यकता पर भी बल दिया।
बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल हम शुगर केन जूस से बनाते हैं, बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं, और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं।
प्रदेश के 20 लाख बच्चों का आधार कार्ड दिसंबर महीने के अंत तक बना लिया जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डाक विभाग ने प्रदेश में आधार कार्ड केंद्र की संख्या बढ़ा दी है। राज्य में पहले 700 आधार केंद्र थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 3000 से अधिक हो गई है। डाक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितंबर तक 8 लाख बच्चों का आधार कार्ड बन चुका है। इसी सफलता को देखते हुए विभाग ने निर्धारित लक्ष्य 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। प्रदेश के 236 बालूघाटों पर कल से बालू खनन और बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वर्तमान में एनजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार 15 जून से आज तक बालू खनन पर रोक है। इस बार बालू खनन की निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी, इससे अवैध खनन रोकने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को किसी अन्य कार्य के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार अत्यंत आवश्यक होने पर केवल 3 महीनों के लिए जिला स्तरीय स्थापना समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति का फैसला स्थानांतरण के साथ ही किया जाएगा। दुर्गा पूजा और दशहरा का उत्सव खत्म होने के बाद प्रदेश भर में दीपावली और छठ की तैयारी शुरू हो गई है। विभिन्न नदियों और तालाबों की साफ सफाई का काम स्थानीय प्रशासन की ओर से शुरू कर दिया गया है। पटना जिला प्रशासन छठ महापर्व को लेकर तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की ओर से जारी निर्देश के अनुसार छठ को लेकर 6 कोषांग गुट गठित किए गए हैं। डीडीसी समीर सौरभ को कोषांग का वरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। 109 घाटों की साफ सफाई के लिए 21 सेक्टर बनाए गए हैं और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने 18 अक्टूबर तक खतरनाक घाटों की रिपोर्ट मांगी है। दीपावली और छठ को लेकर रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल और तेजस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर और 6 नवंबर को नई दिल्ली से होगा। वहीं वापसी में यह ट्रेन 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 4 नवंबर और 7 नवंबर को नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। तेजस स्पेशल ट्रेन का परिचालन दिल्ली से 31 अक्टूबर, 2 नवंबर और 5 नवंबर को किया जाएगा। वापसी में यह ट्रेन पटना से 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर और 6 नवंबर को दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके अलावा एक अन्य ट्रेन का परिचालन भी दिल्ली से पटना के बीच किया जाएगा। साथ ही नई दिल्ली से बरौनी और नई दिल्ली से जयनगर के बीच भी पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 26 जिलों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम होने के साथ ही 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि में 34.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बेगूसराय सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार बादलों के हटते ही तापमान में और कमी महसूस होगी। कैमूर जिले के कुदरा में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने और आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में पुलिस ने 24 नामजद सहित 150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर इस खबर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान तनाव उत्पन्न करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने परिवहन मंत्री से जिले में स्वतंत्र रूप से जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक की नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया है। सांसद के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहने के कारण वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरवल जिले के करपी हाई स्कूल परिसर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा के तहत बनने वाले खेल मैदान की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में एक एक खेल मैदान बनाया जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के एक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दुबई में पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। इसके साथ ही भारतीय टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। भारत 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक प्राप्त करके ग्रुप एक में तीसरे स्थान पर रहा। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने बहाली से जुड़ी खबरों को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार में रिक्तियां खंगालेंगे विभागों के नोडल अफसर। दैनिक जागरण ने खेल से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, फुटकर महंगाई दर 5.49% पर सबसे ज्यादा दाम बिहार में बढ़े। प्रभात खबर ने लिखा है, कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत ने निकाला। आज अखबार लिखता है, डारोन साइमन और जेम्स को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, झारखंड में आईएएस और मंत्री से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी के छापे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए मानव बल की बहाली करेगी। प्रदेश में सुदूरवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार देने के लिए नवादा, मधुबनी और सुपौल समेत 9 जिलों में 18 से 29 अक्टूबर तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के शिक्षक किसी अन्य कार्य के लिए नहीं होंगे प्रतिनियुक्त, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।